Medical Wing of Brahma Kumaris presents Empowering Medical Minds.
ओम शांति एंड ग्रीटिंग्स ऑफ पीस. आज हम बात करेंगे ऑन दिस वेरी इंपॉर्टेंट एंड रेलेवेंट टॉपिक इमोशनल वेलबींग. ये इतनी इंपॉर्टेंट क्यों है इमोशनल वेलबींग? क्योंकि पूरी दुनिया इसकी तलाश में है. हम सब चाहते हैं हम स्वस्थ रहें पूरी तरह, फिजिकली, मेंटली, इमोशनली, स्पिरिचुअली, ऑक्यूपेशनली. ये सब डायमेंशंस ऑफ हेल्थ है और आज हम इमोशनल वेलबींग पर फोकस करेंगे. फिर भी अगर हम देखें इमोशनल वेलबींग इज एक्चुअली अ पार्ट ऑफ मेंटल वेलबींग, क्योंकि हमारा मन ही हमारी मास्टर ऑर्गन है, हमारे मास्टर रेगुलेटर है, हमारा पूरे बॉडी का, शरीर का कंट्रोलिंग पावर है, रूलिंग पावर है. और अगर हमारा मन स्वस्थ नहीं है हम इमोशनली कैसे स्वस्थ रह सकते हैं? तो अगर हम इमोशनल वेलबींग की बात करते हैं उसमें कई इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट्स हैं और वो है इमोशनल बैलेंस, इमोशनल रेगुलेशन और इमोशनल मैच्योरिटी. कई लोग सोचते हैं जब हम इमोशनल वेलबींग की बारे में सोचते हैं हम पूरी तरह अपने इमोशंस को कंट्रोल में रखनी चाहिए, पर ये सच नहीं है क्योंकि इमोशंस को हम कंप्लीटली कंट्रोल नहीं कर पाएंगे. इट इज नॉर्मल टू फील इमोशंस इन डिफरेंट कॉन्टेक्स्ट एंड सिचुएशंस. जैसे कि हमारे सामने परिस्थिति है उसी तरह हमारे इमोशंस उस समय प्रकट होता है. अगर हमारे सामने कोई भी डरावनी सिचुएशन है, लाइफ थ्रेटनिंग सिचुएशन है, तो हमारे अंदर भय जरूर उठेगा उस समय. हमारे सामने कोई अन्याय करते हैं या वायलेंट या एग्रेसिव हो जाते हैं तो हमारे अंदर क्रोध उस समय हो सकता है. या जब हम बहुत अच्छी परिस्थिति से गुजरते हैं तो उस समय हम बहुत अच्छा महसूस करते हैं, खुश महसूस करते हैं. तो ये सब हमारे नॉर्मल रेंज ऑफ इमोशंस है और इनको कंट्रोल करना जरूरी नहीं है. व्हाट इज मोर इम्पॉर्टेंट इज दैट वी लर्न टू रेगुलेट आवर इमोशंस. मतलब किस समय किस प्रकार की हम इमोशंस को एक सीमा में रख सकते हैं, इमोशनल हमारी बाउंड्रीज क्या हम डिटरमिन कर सकते हैं, बहुत ज्यादा एक्सट्रीम में ना जाने का हमें प्रयास करना चाहिए जिससे हमारे अंदर एक इमोशनल बैलेंस आ जाते. सो वी आर शोइंग द अप्रोप्रिएट इमोशन इन द अप्रोप्रिएट सिचुएशन इन द अप्रोप्रिएट मैनर. और जिस तरह की हम इस बैलेंस को बढ़ाते जाएंगे, इसकी आदत डालते जाएंगे और इसके लिए हम कुछ स्ट्रेटेजीज अपना लेते हैं तो हमारा मेंटल बैलेंस भी बढ़ता जाता है, हमारा इमोशनल बैलेंस भी सही रहता है. और एक इमोशनल हेल्दी पर्सन इज इमोशनली बैलेंस्ड एंड मैच्योर पर्सन. इस समय इमोशनल वेलबींग में ध्यान रखना बहुत ज्यादा जरूरी हो गया है, खासकर मेडिकल फ्रेटर्निटी में जो काम करते हैं, चाहे वो मेडिकल स्टूडेंट्स हो, रेजिडेंट्स हो, नर्सेस हैं, पैरामेडिक्स हैं और सीनियर डॉक्टर्स, आप सब लोग जो वाकई में एक टाइटल आपको दिया गया है कोरोना वॉरियर्स, सो आप लोग ज्यादा से समय स्ट्रेस फेस करते हैं और जिस तरीके से आपको दिन रात मेहनत करना पड़ता है हॉस्पिटल में, लाइक एक्सट्रीम सिचुएशंस में काम करनी पड़ती है, तो इमोशनल्स अप्स एंड डाउन्स एक लाइफ का हिस्सा बन जाता है. और सुनने को आता है कई बार जो मेडिकल वर्कर्स हैं तो उन्होंने अपने पूरी परिवार से दूर रहे हैं और अपने फैमिली को मिले नहीं हैं, बच्चों को नहीं मिले, ना गले लगाए, ना उनसे आसपास बैठ के खेले, बात करें। एक तो बहुत बिजी होने की वजह से और दूसरा एक एक्सपोजर के डर की वजह से दैट वी वायरस दूसरों को ना दे। सो इस तरह के माहौल में हम इमोशनली अपने आप को केयर करना बहुत जरूरी है। सो इमोशनल वेलबींग क्या है, आपको कैसे पता चलेगा आप इमोशनली वेल है, हेल्दी है? तो इसके लिए एक छोटी सी अवेयरनेस एक्सरसाइज करेंगे और एक मिनट के लिए अपने आप अंदर भीतर में जाइए, रिफ्लेक्ट करिए। क्या अपनी आप अपने इमोशंस को पहचानते हैं? आर यू इवन अवेयर ऑफ व्हाट ऑल इमोशंस यू आर गोइंग थ्रू? क्या आप अपने इमोशंस को लेबल कर सकते हैं? क्या कुछ समय से आपके अंदर क्या बीता है इमोशनली, उसके बारे में आपने सोचा है? किस प्रकार के इमोशंस आए हैं? जब क्राइसिस सिचुएशन सामने आता है, आप कैसे इमोशनली डील करते हैं? आपकी रिएक्शंस कैसे होता है? घबरा जाते हैं, गुस्से में हो जाते हैं, या बहुत आराम से उस सिचुएशन से निपट लेते हैं? सो ये सब है, कुछ इंडिकेटर्स हैं हम इमोशन से कैसे डील करते हैं, अपने अंदर की इमोशन से ही हम कैसे डील करते हैं। सो जब इमोशनल वेलबींग की बात करेंगे तो इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट सामने आता है। एक तो इमोशनल इंटेलिजेंस, आप सब सुने होंगे, कई बार हम देखते हैं कोई स्टूडेंट, कोई बच्चा बहुत इंटेलिजेंट है, स्कूल में या कॉलेज में बहुत अच्छा करता है, नंबर बहुत अच्छे आते हैं, जो हम नॉर्मल रूप से उनको इंटेलिजेंट समझते हैं, जो एकेडमिकली सक्सेसफुल होता है, या उनको मार्क्स अच्छे आते हैं, या नौकरी अच्छे मिलते हैं, जैसे बहुत अच्छा उनकी सैलरी हो जाता है। पर इन एक्चुअल टर्म्स एन इंटेलिजेंट पर्सन इज वन हु इज इमोशनली इंटेलिजेंट, नॉट जस्ट इंटेलेक्चुअली इंटेलिजेंट। और इमोशनल इंटेलिजेंस उसका मतलब ये है वो अपनी इमोशंस को कैसे मैनेज करते हैं, अपने इमोशंस को खुद कैसे समझते हैं, ना कि सिर्फ अपने इमोशंस को समझना पर दूसरों को इमोशंस को भी वो कैसे समझ पाते हैं। क्योंकि आप जब किसी और की इमोशंस समझ लेते हैं तो हमको ये भी मालूम पड़ जाता है हाउ टू डील विद दैट पर्सन, बिकॉज अंडरस्टैंडिंग नॉट ओनली योर इमोशंस बट अदर्स इमोशन इज द की टू गुड रिलेशनशिप्स। और इसके एक इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट जो है वो एम्पैथी है। जब हम एम्पैथेटिक हो जाते हैं, जो हम दूसरे की भावनाओं को समझ पाते हैं, उनके अंदर क्या चल रहा है, क्या दर्द है, उनके अंदर क्या दुख है, जब हम उनकी जगह में अगर होते हुए तो कैसे हम उसको महसूस करेंगे, ये जो एस्पेक्ट है जिसको हम एम्पैथी कहते हैं, तो आप सब लोग जानते हैं और सब लोग करते ही होंगे, अपने फील्ड में सारे समय एम्पैथी दिखाते होंगे। पर ये एक इम्पॉर्टेंट क्वालिटी ऑफ इमोशनल इंटेलिजेंस है। और इसके अलावा हम जितने बाकी लोगों के साथ कोऑपरेटिव तरीके से चल पाते हैं, जितने हम दूसरों को नजदीक जाते हैं और अच्छी कनेक्शंस बनाते हैं और उनके साथ हमारा व्यवहार कितना अच्छा होता है, कितना हम कनेक्टेड है और एक दूसरों को मदद करके, सहयोग करके साथ चलते हैं, वो भी एक इम्पॉर्टेंट क्वालिटी है इमोशनल इंटेलिजेंस की। और एक इमोशनली इंटेलिजेंट पर्सन वही होगा जो हर परिस्थिति में उनको पता है वो अपने आप को कैसे अडाप्ट करें, अपने आप को कैसे मोल्ड करें, और सिचुएशन के हिसाब से उनका बिहेवियर पैटर्न होता है, उनका सोच विचार चलती है तो उससे हमारे अंदर की भावना भी बहुत अच्छा रहता है। सो इमोशनल इंटेलिजेंस के अलावा एक दूसरा इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है इमोशनल वेलबींग में, वो है इमोशनल फिटनेस। जैसे कि हम फिजिकल फिटनेस पे ध्यान देते हैं, हमारी बॉडी बिल्ड करने के लिए हम कुछ एक्सरसाइज करते हैं, इमोशनल फिटनेस के लिए हम अपनी इमोशंस को मैनेज करना, मतलब हम अपने नेगेटिव इमोशंस को कम करके हमारी पॉजिटिव इमोशंस को बढ़ाना और उन दोनों को सही बैलेंस रखना, और हम डेली लाइफ में क्या रूटीन्स ला सकते हैं, क्या आदतें बना सकते हैं जिससे हमारा इमोशनल बैलेंस बनाए रह सकते हैं। तो ये जो है ये क्वालिटी है, इसको हम इमोशनल फिटनेस कह सकते हैं। और ये एक दिन में नहीं हमारे अंदर आता है, कुछ समय हम इसको रेगुलरली कंसिस्टेंटली प्रैक्टिस करेंगे तो हमारा इमोशनल फिटनेस भी बढ़ सकते हैं, तो हमारा इमोशनल इंटेलिजेंस भी हम बढ़ा सकते हैं, हमारा इमोशनल फिटनेस को भी बढ़ा सकते हैं। अगर हम दोनों बढ़ाएंगे तो हम कह सकते हैं वी आर इमोशनली इन अ गुड प्लेस। हमारा इमोशनल वेलबींग, हमारा भावनात्मक रूप जो है वो अच्छा है, संतुष्ट है, सुख है, सुखी हैं हम। तो ये एक इमोशनल वेलबींग का पूरा पिलर्स जो है हम उस पर हम खड़ा कर सकते हैं, एंड वी ऑल कैन डू इट। इसकी सिर्फ कुछ स्ट्रेटेजीज है जो अपनाना चाहिए। तो हम पहले ये देखते हैं एक इमोशनली हेल्दी पर्सन उनका क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है, उनको कैसे पहचाना जाएगा, तो इसमें हम थोड़ा सा आप गौर करेंगे। आइए देखते हैं एक इमोशनली मैच्योर बैलेंस्ड इंसान उनका व्यवहार कैसे होता है, वो कैसे दिखते हैं, उनकी रिएक्शंस क्या होता है, वो कैसे पहचानेंगे। तो यहाँ कुछ आपको मैं उसके लिए पॉइंटर्स दूंगी, आप प्लीज चेक करिए क्या आप में ये क्वालिटीज है। अगर नहीं है तो ऑब्वियसली आपको इस पे काम करना बहुत जरूरी है। तो पहली बात तो है, एक इमोशनली वेल पर्सन इज समबडी हु इज वेरी कंटेंटेड विद हिज लाइफ, और हर प्रकार की क्षेत्र में वो संतुष्ट रहते हैं, चाहे वो अपने काम पर, चाहे अपने परिवार पर, और जनरली आपकी उनकी लाइफ में जो भी मकसद है, वो गोल्स जो उन्होंने बना रखे हैं, तो उससे भी वो संतुष्ट है। और संतुष्टता बहुत बड़ा एक इम्पॉर्टेंट वेलबींग की कैरेक्टरिस्टिक है, क्योंकि आप संतुष्ट हैं तो आपका इमोशंस बहुत ज्यादा ऊपर नीचे नहीं जाते हैं, एक्सट्रीम्स में नहीं जाते, आप मूडी नहीं बनते हो, आप हमेशा हर्षित भी रहते हो। सो सेकंड क्वालिटी इज हर्षितता, बीइंग हैप्पी, बीइंग इन अ स्टेट ऑफ चेयरफुल पॉजिटिव मेंटल स्टेट। सो इसमें क्या होता है, आप जब चेयरफुल रहते हैं आपको लाइफ में जीने का भी एक उमंग उत्साह रहता है, आप बहुत इजीली खुश हो जाते हैं और दूसरों को भी खुशी देते हैं। तो एक सेकेंड कैरेक्टरिस्टिक है। थर्ड है बैलेंस, हर चीज में बैलेंस रख के चलना, चाहे वो अपने वर्क लाइफ बैलेंस हो, जितना काम करना है, जितना रेस्ट चाहिए, जितना समय अपने लिए देना है, जितने समय अपने परिवारों को, दोस्तों को देना है, तो हर हर फील्ड में बैलेंस रखना। इससे क्या होता है, आपको बैलेंस से लाइफ की एक फ्लो जो है वो एक सर्टेनिटी के साथ होती है, उलझन में नहीं जाते हैं, कन्फ्यूजन्स नहीं होता है दिमाग में, एक मेंटल क्लैरिटी होता है। तो ये भी एक बहुत बड़ा एक वेलबींग की इंडिकेटर है। तीसरी बात जो है हार्मनी है, आप कितनी अपनी रिलेशनशिप्स में हार्मनी रखते हैं, आप लोगों के साथ कितनी अच्छी कोऑपरेटिव तरीके से आप काम करते हैं, उनसे रिश्ता बनाए रखते हैं और छोटे-छोटे बातों में, दूसरों की बातों में आप अक्सेप्ट ना होना, गुस्से में नहीं होना और दुखी नहीं होना, ये सब दिखाता है आप लोगों का रिलेशनशिप्स में कितना आप इन्वेस्ट करते हो। सो इमोशनली भी आप रिलेशनशिप में इन्वेस्ट करेंगे और समय देंगे और प्रेम प्यार, ये जो रिलेशनशिप में बहुत एक बॉन्डिंग फैक्टर है, जोड़ने का काम करता है, उससे हमारा इन्वेस्टमेंट अच्छा होता है और रिटर्न्स भी अच्छे होते हैं। तो हर रोज आप कुछ ना कुछ अपनी रिलेशनशिप में जरूर इन्वेस्ट करिए, तो उससे आपको बहुत मैग्निफाइड रूप में खुशियां मिलेंगी। और नेक्स्ट जो है कैरेक्टरिस्टिक है वो है एक पर्सनल लाइफ, जो जिसको लाइफ का एक लक्ष्य साफ दिखता है। ऐसा नहीं है हम इमीडिएटली अगले 2 साल 3 साल क्या करने वाले हैं, हमारा पढ़ाई हो गई, आगे नेक्स्ट कोर्स करना है या हम नौकरी ढूंढेंगे, ये सब जो है वो जरूर गोल्स इन लाइफ है, बट मीनिंग इन लाइफ, मीनिंग एंड पर्पस इन लाइफ इज समथिंग डिफरेंट। वो है एक लॉन्ग टर्म विजन, अपने लिए एक विजन ढूंढना, मैं इस जीवन में मेरा पर्पस क्या है, मैं इस दुनिया में क्या करने आई हूं, और ये तय करना आसान काम नहीं है, पर अगर आपको वो पर्पस मिल जाता है तो चांसेस आर आपके इमोशनल वेलबींग भी बहुत अच्छे हो जाते हैं, क्योंकि आपको दिशा सही मिल चुका है और उस रास्ते पकड़ के आप चल पड़ते हैं, तो हो सकता है आप बहुत इजीली आराम से उस जर्नी में ट्रेवल करेंगे। बट दिस डज नॉट मीन आपके सामने कुछ प्रॉब्लम्स नहीं आएंगे, कुछ परिस्थितियां, मुश्किल घड़ियां नहीं आएंगी, वो जरूर आएंगे, चैलेंजेस भी आते हैं, बट व्हेन योर पर्पस इज क्लियर यू नो हाउ टू डील विद द चैलेंजेस आल्सो। एंड देन अनदर कैरेक्टरिस्टिक इज जो हम स्वभाव की बात करते हैं, हाउ डू यू फील अबाउट योर सेल्फ, वॉट इज योर लेवल ऑफ सेल्फ कॉन्फिडेंस, अपने आप को कितना वैल्यू करते हैं, कितना वर्थ अपने को अपने ऊपर आप रखते हैं, और उसकी वजह से आपकी सेल्फ कॉन्फिडेंस जो है, सेल्फ एस्टीम जो है वो बनाए रखते हैं। तो जितना आप सेल्फ कॉन्फिडेंट हो और सेल्फ वैल्यू करते हैं, यू आर एबल टू फील गुड अबाउट योर सेल्फ, और ये फीलिंग गुड ही है तो इमोशनल वेलबींग, और ये तो हर एस्पेक्ट में ये रिफ्लेक्ट होता है, आप जिस तरीके से काम करते हैं और अपनी लाइफ के छोटे छोटे सिचुएशन से हम डील करते हैं, तो उसमें आपके सेल्फ कॉन्फिडेंस इसी दिखाई पड़ता है, और लोगों को भी आपके ऊपर विश्वास हो जाते हैं और वो समझते हैं ये बहुत कैपेबल है, ये एक लीडर है, ये समझदार है, तो ये बातें आपसे दूसरों को फील होता है। तो सेल्फ कॉन्फिडेंस, सेल्फ वर्थ, सेल्फ एस्टीम, ये सब इमोशनल वेलबींग की बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्ट्रीब्यूटर्स है, और जो व्यक्ति में ये सब पाया जाता है वो जरूर अपने आप को अच्छा, अच्छे जगह में महसूस करते हैं। द अदर कैरेक्टरिस्टिक इज द एबिलिटी टू डील विद स्ट्रेस। कई लोग हैं जो चैलेंजेस आते हैं, डिफिकल्ट सिचुएशन आते हैं, एकदम घबरा जाते हैं, एक्सट्रीम रिएक्शंस में चले जाते हैं, डर से वो एस्केप करने की कोशिश करते हैं कि कहीं पे इसको सामना ही ना करना पड़े। सो इस तरह की जब हम स्ट्रेस से डील नहीं कर पाते हैं, तो हम इमोशनली अपने आप को वीक महसूस करते हैं। सो if you want to be emotionally strong and feel good, you must have the ability to deal with stress. और stress management अपने आप में बहुत बड़ा विषय है, topic है, जो बहुत strategies है जो अपना सकते हैं आप और उस पर काम कर सकते हैं। So dealing with stress and developing that resilience, the ability to bounce back. So परिस्थिति से आप ऊपर उठ के अगर उसको देखेंगे तो आपको लगता है ये तो ऐसा ही है, कोई सिचुएशन है जो मैं पार कर सकती हूँ, मैं मेरे बस की बात है, मैं इसे डील करके और सफल हो जाऊं। सो ये जो एडवर्सिटी के साथ दृढ़ता रखना अपने अंदर और एक करेजियस एटीट्यूड के साथ उसको सामना करके उससे पार करना, दिस इज एन एस्पेक्ट ऑफ रेसिलियंस। सो स्ट्रेस एंड रेसिलियंस आर टू ऑपोजिट एंड्स, जो स्ट्रेस को रेसिलियंस से साथ हम सामना कर सकते हैं, हम जरूर इमोशनली अच्छा महसूस करेंगे, हमारा इमोशनल वेलबींग बढ़ता है। तो ये कुछ है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ पर्सन हु इज इमोशनली वेल, हु हैज अ गुड इमोशनल बैलेंस एंड हु इज इमोशनली इंटेलिजेंट। क्या हम अपने इमोशनल वेलनेस को या एक इमोशनल हेल्दी पर्सनालिटी आप बना सकते हैं अपने लिए? इसके लिए क्या चाहिए? कुछ तरीके हैं, कुछ टूल्स हैं जो हम इस्तेमाल कर सकते हैं और रेगुलरली इनको यूज करके, प्रैक्टिस करके हम इमोशनल बैलेंस और वेलनेस को बढ़ा सकते हैं। तो पहला जो टूल है वो है माइंडफुलनेस। हम अगर हर वक्त माइंडफुल रहें, माइंडफुल का मतलब प्रेजेंट में रहना, प्रेजेंट में जीना, और जब प्रेजेंट में जीते हैं हमारा पास्ट हमको परेशान नहीं करता है, हम बार बार पास्ट के इमोशंस के साथ नहीं जुड़ते हैं, क्या हुआ, कैसे हुआ, किसने क्या बोला, किसने मेरे साथ बुरी तरह बिहेव किया है या अपमान किया है, अग्रेसिव हुए थे मेरे साथ, तो ये जो सारे पास्ट एक्सपीरियंसेस हैं वो जैसे भी है, तो अगर हम इसे बार बार ना कनेक्ट करके प्रेजेंट में जीते हैं तो हम जरूर हम बेटर फील करेंगे, इमोशनली बेटर फील करेंगे, क्योंकि जरूरी नहीं है जो पास्ट में हमारे साथ हुआ है वो प्रेजेंट में हो जाए, और प्रेजेंट में जीने से हम पास्ट को कट ऑफ कर लेते हैं ऑटोमेटिकली, बट इट इज एन आर्ट। वो कहना शायद आसान है बट प्रैक्टिस करने से हो जाता है। उसके लिए माइंडफुलनेस एक टूल है जो प्रेजेंट में हम जो भी कर रहे हैं वो पूरे ध्यान से करते हैं, पूरी अटेंशन के साथ करें। अगर हम खा रहे हैं तो अटेंशन के साथ खा रहे हैं, जो खा रहे हैं उसका टेस्ट क्या है, उसका फीलिंग क्या है, वो सब हम महसूस करें। तो कहते हैं ना फुल एक्सपीरियंशियल वे ऑफ लिविंग, चाहे हम काम कर रहे हैं तो पूरी अटेंशन के साथ करेंगे, हम बाहर जा रहे हैं वॉक करने के लिए जाते हैं तो हम कैसे चल रहे हैं, हमारा चाल कैसा है, हम क्या महसूस करते हैं अपनी अपनी आसपास, ये सब है माइंडफुल होना। क्योंकि माइंडफुल होने से एक स्पेशल आंतरिक खुशी जो मिलती है ऑफ बीइंग कनेक्टेड विद एवरी मोमेंट ऑफ योर लाइफ, सो इट्स अ वेरी बिग ब्लेसिंग। एंड ये एक प्रैक्टिस है जो हम प्रैक्टिस जरूर कर सकते हैं माइंडफुल होने की, सिर्फ हम अटेंशन रखने की जरूरत है, हम क्या जो काम कर रहे हैं उसका 100% हम प्रेजेंट है, या हमारा चिंता फ्यूचर में जा रहा है या हमारा सोच पीछे जा रहा है, तो अगर होता है हम अपने आप को एकदम करेक्ट कर सकते हैं। द सेकेंड टूल दैट यू कैन यूज टू इमोशनली फील स्टेबल इज व्हाट वी कॉल सर्टेन ब्रीदिंग टेक्निक्स। आप लोग जानते होंगे प्राणायाम है जो एक बहुत मशहूर ब्रीदिंग टेक्निक है, पर अदरवाइज ऑल्सो सिंपल एब्डोमिनल ब्रीदिंग जो है, जो हम लंबी गहरी सांस लेकर अपनी सांस को रेगुलेट करते हैं, कंट्रोल्ड ब्रीदिंग, सांस लेना रोकना और धीरे धीरे सांस को निकाल देना, ये अगर हम रेगुलर साइकिल्स में फॉर 10 मिनट्स 15 मिनट्स अगर हम ब्रीदिंग साइकिल्स करते रहते हैं, हम देखेंगे हमारे मन एकदम शांत होना शुरू हो जाता है और अंदर की बॉडी की भी एक रेस्टफुल फीलिंग जो उसके साथ होते हैं उसकी वजह से भी हम ये महसूस करते हैं हमारे अंदर सब ठीक है, बैलेंस में है, हार्मनी में है। तो ब्रीदिंग इज अ वेरी इम्पॉर्टेंट एंड अ इजी टूल जो हर कोई अपने डेली लाइफ में यूज कर सकते हैं। सिर्फ 15 मिनट 2 बार दिन में करने से बहुत फर्क पड़ता है। ब्रीदिंग के अलावा और प्रकार की भी रिलैक्सेशन टेक्निक्स है। हम नॉर्मली समझते हैं जब रिलैक्सेशन की बात करते हैं, आराम करो, कुछ नहीं करो, आराम से बैठ जाओ, ये रिलैक्सेशन है। वो रिलैक्सेशन नहीं है। रिलैक्सेशन में एक्चुअली हम क्या करते हैं, अपनी ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम, जो हमारी नर्वस सिस्टम जो रिएक्ट करता है, उसकी रिएक्टिविटी को कम करने की कोशिश करते हैं। तो हम कोई भी रिलैक्सेशन टेक्निक यूज करते हैं, जैसे कुछ मसल रिलैक्सेशन टेक्निक्स है जिसमें हम बॉडी की मसल्स को एक एक करके टाइट करके लूज करने का प्रयास करते हैं और एक सिस्टमैटिक तरीके से ये होता है, जैसे हम सर से लेकर पांव तक मसल्स को रिलैक्स करने का ट्रेनिंग देते हैं और ये रोज ट्रेनिंग देने की वजह से एक कंडीशन हैबिट बन जाता है हमारे मन में। हम इसी प्रकार रहने की हमारी आदत हो जाती है रिलैक्स रहने की। तो जब भी कोई सिचुएशन सामने आ जाते हैं जो नॉर्मली हमको टेंशन में स्ट्रेस में डाल देता है, उस समय हम बिकॉज हम रिलैक्सेशन टेक्निक्स या ब्रीदिंग टेक्निक्स रोज प्रैक्टिस किए हुए हैं, तो उस समय हमारा ऑटोनॉमस सिस्टम नर्वस सिस्टम एकदम रिलैक्स्ड शांत होना शुरू हो जाता है और वो शांति रहता है। इसीलिए हमारा रिएक्शन भी इतना एक्सट्रीम रिएक्शन नहीं होता, हम उस सिचुएशन इजीली उससे हम उसको जुड़ सकते हैं। तो फोर्थ इंपॉर्टेंट टेक्निक इज विजुअलाइजेशन। विजुअलाइजेशन में क्या करते हैं, हम इमेजेस को यूज करते हैं, इमेजेस पॉजिटिव इमेजेस को हम अपने मन में लाते हैं। जैसे हमारा मन एक स्क्रीन है, हम उसके ऊपर अच्छे अच्छे सीन लाते हैं, पॉजिटिव सीन्स, चाहे वो एक सीन जो ऑलरेडी हम लाइफ में एक्सपीरियंस कर चुके हैं। और ये सीन्स जो होते हैं रिलैक्सिंग सीन्स होते हैं, जैसे कि पहाड़ में जाके हम पहाड़ी जगह में उसका पूरा आनंद ले रहे हैं, या हम सी साइड जाते हैं, समुन्द्र के किनारे बीच में जाते हैं और वहां का वातावरण महसूस करते हैं, या हम एक बहुत पीसफुल जगह, कोई भी हो, एक गार्डन हो, एक जंगल हो, एक मेडिटेशन रूम हो, आपका किचन हो, कहीं वो जहां पे आप अक्सर शांति महसूस करते हैं, वहां पे आप या तो उस जगह के सीन्स को प्रैक्टिस करिए, बार बार मन में उसको विजुलाइज करके उस सिचुएशन में जैसे आप मौजूद हैं वैसे महसूस करिए, विच मीन्स दैट यू आर फीलिंग दैट सिचुएशन विथ ऑल योर सेंसेस। आप वहां की साउंड्स भी सुन सकते हैं, आप वहां की स्मेल्स को भी आप स्मेल कर सकते हैं, चाहे वो अच्छी फूलों का खुशबू ना हो या फूल पत्तियों का, यू नो फॉरेस्ट में जो ग्रीनरी का स्मेल होता है, या आप समुन्द्र के किनारे हैं वहां की सॉल्टी एयर का स्मेल जो आते हैं, या पहाड़ी इलाके में आप फ्रेश हवा को महसूस करते हैं, सनलाइट धूप की किरणें महसूस करते हैं, ठंडी ठंडी हवा को महसूस करते हैं, या आपको कई बार स्मेल के साथ फील भी होता है आपकी बॉडी में, जैसे पानी की चीखा है समुद्र में, जब आप बीच में सी साइड में खड़े हैं वहां पे आपका उसका ठंडी वेव्स का फीलिंग होता है, पांव छूते हुए निकलते हुए, और ये सब करते करते आप अपने टेंशन को निकाल सकते हैं। आपके मन में जो भी नेगेटिव बातें, नेगेटिव विचार हैं, नेगेटिव फीलिंग्स जो चल रही हैं वो इस इन विजुअलाइजेशन टेक्निक्स में वो निकल जाते हैं, क्योंकि आप रिलैक्स्ड होते हैं और अच्छा महसूस करते हैं, और रिलैक्स्ड होने की वजह से नेगेटिविटी भी निकल जाती है। ब्रीदिंग में भी यही होता है, हम नेगेटिव बातों को रिलीज कर सकते हैं अपनी सांसों के साथ। नेक्स्ट जो एक टेक्निक है उसको हम ग्राउंडिंग बोल सकते हैं। ग्राउंडिंग में क्या होता है, जब हम बहुत ज्यादा एक सिचुएशन में इमोशनली प्रभावित हो जाते हैं, वो इमोशन हमारे ऊपर हावी हो जाते हैं, जैसे एक एग्जाम के पहले या कोई एक्सीडेंट हो गया रोड में, जो एकदम घबरा जाते हैं और डर जाते हैं, तो उस समय क्या होता है, हमारा ब्रेन भी बहुत जल्दी रिएक्ट कर देते हैं, तो उस समय हमको समझ भी नहीं आता है हमने क्या करना है, कैसे बिहेव करना है, और इमोशनली वी आर ओवरटेकन बाय दैट सिचुएशन। उस समय ग्राउंडिंग के क्या करनी है, आप जाके एक जगह में, जहां पे एक स्टेबल जगह में बैठ जाइए, कुर्सी है और बैठने की जगह नहीं है, खड़े हो जाइए किसी चीज को पकड़कर हाथों से, और अपने पांवों को जमीन पर महसूस करिए एंड टेल योर सेल्फ आई एम स्टेबल आई एम ग्राउंडेड, और साथ साथ अपने मन को उन नेगेटिव विचारों से, नेगेटिव भावनाओं से दूर करने के लिए आप देख रहे हैं अपनी आसपास क्या क्या आपको दिखती है, पांच चीज जो आपको दिखती है, पांच आवाजें जो आपको सुनते हैं आप, या समथिंग अबाउट योर एनवायरमेंट यू स्टार्ट नोटिसिंग एंड सेइंग इट लाउडली टू योरसेल्फ। तो इससे क्या होता है, हमारा दिमाग जो है उस नेगेटिव भावनाओं से हटकर शांत होना शुरू होता है, क्योंकि हमने दिमाग को कोई और काम दे दिया है। सो द इमोशन स्लोली स्टार्ट सबसाइडिंग एंड फेडिंग आउट, एंड दिस इज अ वेरी गुड एक्सरसाइज इन योर ओवरवेलम इमोशन। और एक तरीका है जो हम नॉर्मली हम सब लोग यूज ही करते हैं, विच इज मेडिटेशन। तो मेडिटेशन में हम शांति महसूस करने के लिए अपने अंदर भीतर जाते हैं, वी रिफ्लेक्ट ऑन आर सेल्फ, वी रिफ्लेक्ट ऑन आर हायर सेल्फ, हम एक कॉन्शियसनेस, सुप्रीम सोल कॉन्शियसनेस, हायर पावर के साथ जुड़ सकते हैं, वहां से शक्ति देके अपने आप को शक्ति, शांति, खुशी ये सब महसूस कर सकते हैं। हम अपने ओरिजिनल नेचर और ओरिजिनल क्वालिटीज विच इज एक्चुअली द इनर बीइंग द सोल, उससे कनेक्ट करके हम पूरी तरह अपने आप को एक स्टेबल वेल बीइंग मेंटल फ्रेम ऑफ माइंड क्रिएट कर सकते हैं। और ऑफ कोर्स देयर आर मेनी टाइप्स ऑफ मेडिटेशन, और कुछ ते हैं, कुछ चैंटिंग है, ओम चैंटिंग है, मंत्रा चैंटिंग है, बहुत सब, पर राजयोगा मेडिटेशन का फायदा बहुत ये है दैट इट focuses on one, the inner self, the qualities of the inner self, the soul, and it gives a feeling of empowerment, क्योंकि हमारे मन में जो विचार चलाते हैं उस समय वो बहुत powerful positive विचार है, और हम जब higher source से connect करके वो विचार चला के महसूस करते हैं, it is a complete experience, so it enhances well-being. और उससे जुड़े हुए एक और जो टूल फॉर चेंज है, जो हम पॉजिटिव सेल्फ टॉक या एफर्मेशंस जो बोलते हैं, पॉजिटिव सेल्फ टॉक में हम ध्यान रखते हैं अपने मन के विचार क्या चल रही है, अक्सर हमारे मन में किस प्रकार के विचार चलते हैं, बहुत ज्यादा फालतू की, वेस्टफुल, जो व्यर्थ बोलते हैं उस टाइप के विचार चलते हैं, या नेगेटिव, या अच्छे विचार भी तो चल सकते हैं जो हम पॉजिटिव महसूस करते हैं। तो इसकी ट्रेनिंग दिया जा सकता है, हाउ टू कीप हैविंग अ पॉजिटिव इनर डायलॉग विद आवरसेल्फ। सो जब भी आप नोट करेंगे आपके मन में बहुत ज्यादा नेगेटिव विचार चल रही है, व्यर्थ चल रही है, आप कोशिश करें, अटेंशन लाइए और आप देखें इसको हम कैसे पॉजिटिव डायरेक्शन दे सकते हैं। तो इसका एक सिंपल टेक्निक जो है SOS टेक्निक, विच मीन्स S स्टैंड्स फॉर स्टॉप एंड O स्टैंड्स फॉर ऑब्जर्व एंड S थर्ड S सेकेंड S स्टैंड्स फॉर स्टीयर। स्टॉप, ऑब्जर्व, स्टीयर, जैसे कि ट्रैफिक सिग्नल है, हम रेड लाइट में रुकते हैं, फिर येलो लाइट में हम सोचते हैं, फिर हम ग्रीन लाइट में चल पड़ते हैं। वैसे हमारे मन के विचारों की गति में भी हम कभी कभी जब बहुत नेगेटिव फील करते हैं, हम अपने आप को रिफ्लेक्ट करके स्टॉप करें, क्या चल रहा है, क्यों ये बातें हो रही है, क्या इसको मैं बदल सकती हूँ, क्या मेरे रिएक्शंस को मैं बदल सकती हूँ, तो इसमें रिफ्लेक्ट करिए और फिर आप एक्शन ले लीजिए। तब आप देखेंगे आपकी फ्लो जो है, द फ्लो ऑफ योर माइंड विल बी ब्यूटिफुल, इट विल बी हार्मोनियस, बिकॉज आप हमेशा एक माइंडफुल अटेंटिव तरीके से आप अपने माइंड को रेगुलेट कर रहे हैं। एंड समटाइम्स वी फील दैट हम बहुत नेगेटिव सोच रहे हैं अपने बारे में, तो उस समय आप नेगेटिव थॉट्स और जो फीलिंग्स अंदर आती हैं उनको नोट कर लीजिए और आप कोशिश करिए उसकी जगह में पॉजिटिव अल्टरनेटिव रिस्पॉन्स, उसके सामने नया रिस्पॉन्स बनाए, देखें और उसको मन में बार बार प्रैक्टिस करें, क्योंकि वो ऑटोमेटिकली नहीं आता है, तो आपको इसमें कोशिश करना पड़ेगा। और कई बार हम देखते हैं अगर हम नोट करके लिस्ट बना के कहीं पॉकेट में रखेंगे या अपने बैग में रखेंगे, पर जब भी बहुत ज्यादा इमोशनल हो जाते हैं, नेगेटिव विचार चल रहे हैं मन में, आप उसको उठाइए और उस नए डायलॉग जो आपने नई स्क्रिप्ट बनाई है अपने लिए, आपके मन के विचारों की डायरेक्शन को बदलने के लिए, पॉजिटिव बनाने के लिए, उसको आप बार बार रिफ्लेक्ट करें, उसी पे जुड़े, तो इससे क्या होता है, एक कंडीशनिंग प्रोसेस हो जाती है, आपके माइंड नया सर्क्यूट्स बनाते हैं, नए नए न्यूरल सर्क्यूट्स आर फॉर्म्ड इन द ब्रेन द वे यू प्रोग्राम इट। सो इट इज अ पार्ट ऑफ अ प्रोग्रामिंग ऑफ अ माइंड। जैसे हम पॉजिटिव प्रोग्रामिंग करते हैं तो हमारा आउटपुट जो है पॉजिटिव विचार, पॉजिटिव भावना और पॉजिटिव एक्शंस। सो इसका बहुत बड़ा फायदा है और इसको जरूर अपना लिए और इसके लिए प्रैक्टिस कर लीजिए। अभी हम देखेंगे कौन सी ऐसी स्ट्रेटजीज हैं जो अपना सकते हैं जो हमारी वेलबींग को बढ़ा सकते। सो व्हाट आर दोज स्मॉल लिटिल डेली प्रैक्टिसेस दैट वी कैन डू टू एनहांस आवर इमोशनल वेलबींग? सबसे पहले ग्रैटिट्यूड, बीइंग ग्रेटफुल फॉर एवरीथिंग दैट वी हैव, जो हमारे लाइफ में जो हमको मिला है, जो हमें पाया है, जो जीवन ने हमको दिया है, जो भी है, चाहे वो जितने भी छोटी छोटी चीज ना हो, उसके लिए एक ग्रेटिट्यूड फील करना और उसको हम बढ़ाने के लिए रोज रोज अगर एक डायरी में हम लिखें, आज मैं किस चीज के लिए ग्रेटफुल हूं, क्या मेरे साथ आज ऐसी बात हुई है जिसकी वजह से मैं अंदर से अच्छा महसूस कर रही हूँ, ग्रेटफुल महसूस कर रही हूँ, थैंकफुल महसूस कर रही हूँ, तो वो लिखें, तीन चीज रोज रोज लिखें और हफ्ते के बाद आप पूरे हफ्ते भर जो लिखे हैं उसको एक उसके ऊपर ध्यान लगाइए, देखिए, पढ़िए और आपको लगेगा वाकई में मेरे जीवन कितने अच्छे हैं, मैं कितनी लकी हूँ, कितनी भाग्यशाली हूँ, मेरे को ये सब मिला है और मुझे ये सब प्राप्त करने का मौका मिला है। सो ग्रेटिट्यूड इज वन ऑफ द थिंग्स। द सेकेंड थिंग दैट यू कैन डू इज एप्रिसिएशन। आप अपने आप को भी अप्रिशिएट करिए, दूसरों को भी अप्रिशिएट कर लीजिए, आपके साथ सहयोगी जो काम करते हैं, चाहे वो घर पे हो, चाहे आपकी वर्क प्लेस में है, जो आपके लिए लाइफ थोड़ा सा इजी बना देते हैं, तो उनके लिए ग्रेटफुल भी होना और उनको अप्रिशिएट करना। और अप्रिसिएशन सिर्फ मन में अप्रिशिएट करना काफी नहीं है, अप्रिसिएशन शुड बी वर्बली एक्सप्रेस्ड इन वर्ड्स। और अप्रिसिएशन ऐसे करें, ऐसे नहीं है तुम बहुत अच्छे हो, आप क्यों अच्छे हो ये भी बताइए। आप इसीलिए बहुत अच्छे हो क्योंकि हमेशा आप टाइम से आके आपके काम करते हो। तो व्हेन यू गेट स्पेसिफिक इन योर अप्रिसिएशन, तो जो अदर पर्सन जो है जो अप्रिशिएट कर रहे हो आप, वो भी बहुत ज्यादा उमंग उत्साह से और आपके साथ व्यवहार रखते हैं, काम करेंगे। सो अप्रिसिएशन शुड नॉट बी ओनली फॉर आउटसाइडर्स, यू शुड नॉट फॉरगेट हमारे अपने लोग जो घर पे हैं, जो दिन भर हमारे लिए कुछ कुछ करते रहते हैं, चाहे अपनी फैमिली मेंबर हो, पेरेंट्स हैं, तो उनको भी अप्रिशिएट करिए, अपने बच्चों को अप्रिशिएट करिए जो आपकी लाइफ में एक एनर्जी लाए हैं, एक पॉजिटिविटी लाए हैं, खुशी ला रहे हैं, तो उनको भी अप्रिशिएट करिए। क्योंकि हम डांटते हैं, क्रिटिकल होता है, बहुत जल्दी हो जाते हैं, पर अप्रिसिएशन के समय थोड़ा सा हम कंजूसी कर देते हैं, तो खुल कर अप्रिशिएट कर लीजिए। देने का भाव रखना बहुत जरूरी है, यू नो, द मोर यू गिव एंड गिव इन एन अनसेल्फिश मैनर, अनकंडीशनल मैनर, तो जितना देंगे उतना खुशी पाएंगे। तो इमोशनली यू फील वेरी गुड व्हेन यू डू एक्ट्स ऑफ काइंडनेस। सो आप देखें रोज रोज कौन सी एक्ट्स ऑफ काइंडनेस करते हैं आप, किसके लिए करते हैं। कई बार हम एक्ट्स ऑफ काइंडनेस सिर्फ अपनों के लिए करना काफी नहीं है। इट इज वेरी इजी टू डू गुड थिंग्स फॉर पीपल हु आर योर फैमिली, हु आर योर फ्रेंड्स, पर उन लोगों के लिए करें जो अपने नहीं हैं, जो स्ट्रेंजर्स हो सकते हैं, जो आप कैजुअली कहीं पे मिले और आप देख रहे हैं वो मुश्किल घड़ी में है या वो कुछ तकलीफ में है, तो उनको कैसे मदद करें। सो एक्ट्स ऑफ काइंडनेस इज अ काइंड ऑफ अल्ट्रुइस्टिक बिहेवियर, जो साइकोलॉजिस्ट काफी समय से इसको स्टडी किए और उन्होंने देखा जो अल्ट्रुइस्टिक है और जेनरस है और दूसरों के लिए काम करते हैं, सेवा भाव से जो काम करते हैं, उनकी ब्रेन की फंक्शनिंग बहुत अलग होता है। इनकी ब्रेन की कोहेरेंस जो है या ब्रेन के कुछ हिस्से जो काम करते हैं तो बहुत ज्यादा एफिशिएंटली काम करते हैं और एक फील गुड फीलिंग पूरे अंदर महसूसता होती है। तो ये एक्ट्स ऑफ काइंडनेस बहुत जरूरी है। फिर एक और काम करना हमारे लिए जरूरी ये भी है, हम जो भी हमारे साथ होता है, जिस परिस्थिति से हम गुजरते हैं, कोई डिफिकल्ट सिचुएशन और चैलेंज है, कोई ऑब्स्टिकल फेस कर रहे हैं, क्या उस ऑब्स्टिकल और चैलेंज को अपने माइंड में हम दूसरे पर्सपेक्टिव से देख सकते हैं। देखना चाहिए, क्योंकि अगर हम रिजिड होके एक ही पर्सपेक्टिव से देखते हैं तो हमको वो चीज या तो बुरा लगेगा या हमको नुकसान वाली बात लगेगा, अच्छा नहीं लगेगा, हम उसी पे फिर ज्यादा बंध जाते हैं और उसी के बारे में हमारा दिमाग विचार चलते हैं, जिसकी वजह से इमोशंस भी नेगेटिव हो जाते हैं। बट इंस्टेड ऑफ दैट, इफ वी वर टू रीफ्रेम द वे वी लुक एट अ सिचुएशन, फॉर एग्जाम्पल अगर आपकी कोई खास दोस्त हैं, आपको बहुत समय से आपसे बातें नहीं कर रहे हैं, आपके फोन नहीं उठा रहे हैं, आपको लग रहा है ये मुझसे रूठ गया या मैंने कुछ कर दिया जो उनको हर्ट हो गए, वो मेरे से मुझे अवॉइड करना चाहते हैं, तो इस तरह इस प्रकार के नेगेटिव विचार हमारे दिमाग में चलना शुरू होता है। अगर इसको हम पॉजिटिवली रिफ्रेम करें, हम ये भी कह सकते हैं नहीं वो आजकल ज्यादा बिजी होंगे, उनकी ड्यूटी ज्यादा हो रही होंगी या कुछ हुआ होगा जिसकी वजह से वो मुझसे बात नहीं कर पा रहे, उनके समय नहीं निकल रहा है। तो अगर हम इसको इस तरीके से रिफ्रेम करके सोचते हैं तो हमारा उसी समय उनके साथ ना इतनी नेगेटिव फीलिंग पैदा होता है, ना हम दुखी हो जाते हैं, ना हमारा रिश्ता टूटता है उनके साथ। हम असम्पशंस पे नहीं जीना चाहिए, हम हमेशा वी शुड ऑलवेज लुक फॉर एन ऑल्टरनेटिव वे ऑफ लुकिंग एट अ सिचुएशन। दिस एवरी कॉइन हैज टू साइड्स, सो लर्न टू लुक एट द अदर साइड। जब ये आदत डालेंगे अपनी लाइफ में, हर सिचुएशन और चैलेंज में हम एक मिनट ठहर के सोचते हैं नहीं, इसका कारण कुछ और भी हो सकता है, ये व्यक्ति मेरे साथ इस तरह बात किया है तो इसका कारण कुछ और होगा, हो सकता है ये अपनी लाइफ में कुछ स्ट्रेस से गुजर रहे हैं, या उनके घर में कोई बीमार है, कोई प्रॉब्लम खड़ी हो गई जिसकी वजह से वो मेरे साथ अच्छे नहीं बात कर रहे हैं। तो इस रीफ्रेमिंग की प्रोसेस अगर हम प्रैक्टिस करते रहते हैं, मोस्ट सिचुएशंस को हम इमोशनली अच्छी तरीके से हैंडल कर पाएंगे। अगली स्ट्रैटेजी जो है वो सेल्फ केयर है। हम अपने ऊपर कितना ध्यान रख रहे हैं, क्या हम अपने लिए कितना समय निकाल रहे हैं, चाहे वो रेस्ट करने के लिए, चाहे एक कोई हॉबी में हम अपनी क्रिएटिविटी दिखाने के लिए, चाहे वो पेंटिंग हो, म्यूजिक हो, डांस हो, कोई स्पोर्ट्स हो, जिसमें हमारा टेंशन भी निकल जाता है और हमको लगता है एक रूटीन से हमको एक ब्रेक मिला है, इसे हम बहुत अंदर से सेटिस्फाइड और खुशी महसूस करते हैं क्योंकि एक रिलीज हमारा हो जाता है। सो सेल्फ केयर इज इम्पॉर्टेंट, एंड एज अ पार्ट ऑफ सेल्फ केयर फिजिकल एक्सरसाइज इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट। हम सोचते हैं इमोशनल वेलबींग को फिजिकल एक्सरसाइज से क्या लेन देन, बहुत गहरे संबंध है, क्योंकि हम फिजिकली फिट और हम एक्सरसाइज करते हैं, हमारे ब्रेन में कुछ चेंजेस होते हैं जो हार्मोन्स जो है हमारी ब्रेन हार्मोनल पैटर्न्स में चेंजेस आते हैं, जिसको हम न्यूरोट्रांसमीटर्स बोलते हैं। एंडोर्फिन एक पर्टिकुलर काइंड ऑफ न्यूरोट्रांसमीटर है, इट इज ऑल्सो कॉल्ड द फील गुड हार्मोन, क्योंकि जब वो रिलीज होता है हम ऑटोमेटिकली अंदर से खुशी आनंद महसूस करते हैं। और ये स्पोर्ट्स और एक्टिविटीज और इन वर्कआउट्स, इन चीजों से ये हार्मोन रिलीज होते हैं और उसकी वजह से हमको लगता है ये बार बार करते रहे। दैट इज वाई सम पीपल आर एडिक्टेड टू स्पोर्ट्स एंड गेम्स, विच इज नॉट अ बैड एडिक्शन। और सो फिजिकल फिटनेस इज एन इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ सेल्फ केयर। और सेल्फ केयर में आता है सिर्फ अपने लिए टाइम, पर्सनल टाइम नहीं निकालना, बट हमारे परिवारों के साथ भी हम कितना टाइम निकालते हैं, उनके साथ हम किस तरह की रिलेशनशिप बना के रखते हैं, व्हाट इज द क्वालिटी ऑफ द रिलेशनशिप विद आवर फैमिली मेंबर्स, हमारे उनके साथ क्या बॉन्डिंग है, क्या उनके साथ हम कुछ एक्टिविटीज करते हैं, कुछ अच्छी बातचीत बैठ के करते हैं। आजकल देखते हैं लोग साथ भी नहीं बैठते हैं, अपने अपने मोबाइल और गैजेट्स के साथ बिजी रहते हैं, साथ रहते हुए भी उन चीजों में बिजी रहते हैं, तो एक कॉन्वर्सेशन नहीं होते, घरों में कॉन्वर्सेशन कम होते हैं, सब अपने अपने लाइफ अलग अलग जी रहे हैं। सो सेल्फ केयर इंक्लूड्स दिस क्वालिटी ऑफ रिलेशनशिप्स ऑल्सो, चाहे वो अपने माँ बाप से, अपने दोस्तों से, अपने बच्चों से, अपने कोलीग से। सो ये सारे उसके लिए हम क्या अपना रहे हैं, उस पर कैसे ध्यान रख रहे हैं। सो व्हेन वी डू सेल्फ केयर वी ऑल्सो गिव द बेस्ट टू अदर पीपल एंड ऑटोमेटिकली आवर रिलेशनशिप्स बिकम बेटर। नाउ अपार्ट फ्रॉम सेल्फ केयर, अनदर इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ इमोशनल वेलबींग इज फोकसिंग ऑन योर स्ट्रेंथ्स। क्या आप पहचानते हो आपकी खूबियां क्या है, आपकी अच्छाइयां क्या है, आपकी अच्छी क्वालिटीज क्या है? क्या अगर आपको मैं बताऊं, एक लिस्ट बनाओ अपनी पॉजिटिव क्वालिटीज एंड एट्रीब्यूट्स आप बना सकते हैं, तो बनाना चाहिए और हम सबको बनाना चाहिए, क्योंकि हम कई बार हमारे अंदर की अच्छाइयों को वैल्यू ही नहीं करते हैं, हम ज्यादा अपने साथ क्रिटिकल रहते हैं, कमियां निकालते हैं, नुक्स निकालते हैं, हमेशा बोलते हैं अब मैं और अच्छा कर लेती, मैं ऐसे नहीं करना चाहिए था, लोगों को मैंने डिसअपॉइंट कर दिया, वो उनकी एक्सपेक्टेशन में मीट नहीं कर पाए, मेरे काम इतना अच्छा नहीं है दूसरों के जैसे, तो ये सब सेल्फ क्रिटिकल एटीट्यूड जो है हमको ऑटोमेटिकली इमोशनली डिसएम्पावर करते हैं। हम इतनी क्रिटिकल होते हैं अपने आप से, कैसे खुश रहेंगे। सो लर्न टू बी काइंड टू योरसेल्फ। दैट ब्रिंग्स अस टू द लास्ट स्ट्रेटजी फॉर क्रिएटिंग इमोशनल वेलबींग, दैट इज सेल्फ कंपैशन। हम दूसरों के लिए बहुत जल्दी करुणा दिखाते हैं, उनको समझाते हैं, बताते हैं, मदद करते हैं और बोलते हैं इट इज ओके, इट्स डोंट वरी, थिंग्स विल बी फाइन, और हाथ पकड़ के चलते हैं जब वो डिफिकल्ट टाइम से गुजरते हैं। पर अपने साथ क्या हो जाता है, हम अपने आप से भी उतना ही कंपैशन दिखाते हैं, करुणा भाव अपने लिए भी रखते हैं। तो ये करुणा भाव अपने लिए रखना भी बहुत इम्पॉर्टेंट है, और उसके लिए आप ज्यादा क्रिटिकल ना हो जाएं, अपने आप को माफ करना भी बहुत जरूरी है। गलतियां तो सब करते हैं, तो अगर हमने भी किया है तो क्या हुआ, हम अपने आप को माफ करें और सीखते हैं उस गलतियों से, हम सीखते हैं क्या हमने सही नहीं किया है और नेक्स्ट टाइम उसको इम्प्रूव कैसे करें। पर उसको लेकर बहुत बार बार मन में वही बार बार सोचना और गिल्ट पैदा करना, बिकॉज गिल्ट इज ऑल्सो अ वेरी सिवियर नेगेटिव इमोशन जो हमको बिल्कुल डिप्रेशन की तरफ ले जा सकता है। सो अपने आप को कंपैशनेट तरीके से आप डील करिए और फील करिए और माफ करिए जहां जब जरूरत है, और माफ करने के बाद आगे बढ़िए। दैट ब्रिंग्स अस टू द लास्ट पार्ट ऑफ व्हाट आई वांट टू डिस्कस टुडे, दैट स्पिरिचुअलिटी से हम क्या सीख सकते हैं। स्पिरिचुअली हम अपने आप को एम्पावर करना है वेलबींग की तरफ, इमोशनल वेलबींग की तरफ। तो क्या क्या पॉइंट्स है जो हम स्पिरिचुअलिटी, खासकर मैं तो राजयोग स्पिरिचुअलिटी जो मैं प्रैक्टिस करती हूँ उससे मैंने क्या सीखा है, मैं आपके सामने रखना चाहती हूँ कुछ पॉइंट्स। पहली बात तो है, हम स्पिरिचुअलिटी ये सीखते हैं दैट आई एम अ सोल, सो सोल कॉन्शियस रहना, हमेशा ये सोच के रहना ये जो मेरे लाइफ में जो भी हो रहा है, जो भी है, ये सब पासिंग है, टेम्पररी है। और जब हम सोल की तरफ अपने सोल की ओरिजिनल क्वालिटी से कनेक्ट करते हैं, विच आर पीस, लव, हैप्पीनेस, पावर, प्योरिटी, नॉलेज, जब इन गुणों से हम कनेक्ट करके उनको इम्बाइब करते हैं बार बार, हम सोल कॉन्शियस स्टेट में हो जाते हैं। अब जब सोल कॉन्शियस स्टेट से हम अपने लाइफ की सारे कार्य को कंडक्ट करते हैं, वी बिकम ईगोलेस। और कोई किसी ने कुछ कहा है, कुछ बोला है, आपकी परफॉर्मेंस ऊपर नीचे हो गई, सीनियर के साथ कुछ प्रॉब्लम हो गई, लाइफ में कुछ चैलेंज आ गई, जो भी है आपको पता है दैट इट इज समथिंग दैट विल पास, इट्स टेम्पररी, एंड मुझे इसमें बुरा मानने की जरूरत नहीं है। लोग जो हैं वो है, जैसा भी है वो है, उनको मैं वो भी आत्मा समझकर एक्सेप्ट करूं। तो एक बहुत सबसे बड़ा लेसन जिससे हम हल्का महसूस करते हैं। द सेकेंड थिंग दैट आई लर्न एंड विच इज टू बी प्रैक्टिस इज लेटिंग गो। जब हमको लगता है ये सब परमानेंट नहीं है, ये सब खत्म होने वाले, या वी आर यू नो लाइक ट्रेवलर्स ऑन अ जर्नी, सीन्स चलते हैं, आसपास देखते हैं, बट हमारा गाड़ी आगे बढ़ता रहता है, सो यू नो दैट ये सीन खत्म हो जाएगा, नेक्स्ट आएगा। सो कोई भी सीन को पकड़ के नहीं बैठ सकते हैं, राइट? वैसे ही हमारे दिमाग में भी बहुत पुरानी पुरानी बातों जो हम बार बार याद करके दुखी हो जाते हैं, क्योंकि हमारे मेमोरीज में कई प्रकार के इमोशंस जुड़े हुए हैं, और खासकर अगर हमारी ट्रॉमेटिक मेमोरीज हैं, दुर्घटनाएं हैं जो हम बीती हुई दुर्घटना को बार बार याद करते हैं और वही इमोशंस प्रकट हो जाते हैं मेमोरीज के साथ इमोशंस। सो जितने हमारे साथ हो चुके हैं वो हो चुके हैं, खत्म है। सो लर्न टू पुट अ फुल स्टॉप एंड लेट गो एंड मूव ऑन इन लाइफ, दैट ब्रिंग्स यू इन अ बेटर मेंटल बैलेंस एंड इमोशनल बैलेंस। द थर्ड थिंग दैट इज इम्पॉर्टेंट टू रियलाइज एंड प्रैक्टिस इज इंट्रोवर्टेडनेस, अंतर्मुख। और हम लोग समझते हैं इंट्रोवर्टेड होना मतलब एकदम कट ऑफ होके अलग सा बैठना, रूठ जाना लोगों से, वो इंट्रोवर्टेडनेस नहीं है। इंट्रोवर्टेडनेस इन स्पिरिचुअलिटी मीन्स लुकिंग विद इन, द एबिलिटी टू लुक विद इन, रिफ्लेक्ट करना, मैं कौन हूँ, मैं कैसा हूँ, मेरी लाइफ की पर्पस क्या है, इस सबको रिफ्लेक्ट करने से जो हमारी एक विजन डेवलप होता है, जो हमारा डायरेक्शन मिलता है लाइफ में, वो हमारे लिए बहुत जरूरी है। उसकी वजह से हमारी क्लैरिटी ऑफ पर्पस आ जाते हैं। सो लर्निंग टू बी इंट्रोवर्टेड, रिफ्लेक्टिंग ऑल द टाइम इन अ स्टेट ऑफ कॉन्स्टेंट सेल्फ अवेयरनेस इज वेरी गुड, और ये स्पिरिचुअलिटी से आपको ये मिल सकता है, और आप इसको अपनी लाइफ में रेगुलरली इसकी प्रैक्टिस कर सकते हैं। द फोर्थ थिंग दैट ऑल ऑफ अस कैन प्रैक्टिस एंड विच स्पिरिचुअलिटी टीचेस अस इज बीइंग ऑब्जर्वर, जो हम साक्षीपन की बात करते हैं, साक्षी होके देखो जो हमारे साथ होता है, बी अ डिटैच्ड ऑब्जर्वर एंड वॉच इट। जो माइंडफुलनेस भी एक टेक्निक जो मैंने पहले बात की इसी के ऊपर था, वो हाउ टू बी माइंडफुल येट बी डिटैच्ड। और डिटैचमेंट का अगर अगेन मतलब नहीं है आप बिल्कुल कट ऑफ हो जाओ और किसी से रिश्ता ना रखो या किसी को प्यार नहीं करो, वो नहीं है। डिटैचमेंट इज लर्निंग टू रिस्पेक्ट, लव एंड येट बी डिटैच्ड। इससे क्या होता है, आप इमोशन से भी आप बहुत ज्यादा इमोशन से हावी नहीं होते हो, क्योंकि आप इसको दूर से देखते हो, डिटैच पर्सपेक्टिव से देखते हो, तो इतना आपको इफेक्ट नहीं करता है जो इसको पूरी तरह इन्वॉल्व फंस के उसपे महसूस ना करते हैं। तो इट इज अ ब्यूटिफुल प्रिंसिपल टू अप्लाई, लुक एट एवरीथिंग दैट हैपेंस इन अ डिटैच मैनर एंड यू विल फाइंड दैट इमोशनली आर मच मोर बैलेंस्ड। द अदर प्रिंसिपल इज बीइंग अ ट्रस्टी, जो जैसे मैंने कहा है वी आर लाइक ट्रेवलर्स ऑन अ जर्नी, और ये जर्नी सिर्फ इस लाइफ की नहीं है, बहुत जन्म की जर्नीज है, वी हैव टेकन बर्थ्स एंड रीबर्थ्स। तो हमारे परमानेंटली हमारा कुछ भी नहीं है, वी आर हियर टू एंजॉय इन दिस लाइफ टाइम वॉट एवर वी हैव। सब हमारी ये ट्रस्टीपन की बात होती है, दैट वी आर अ ट्रस्टी एंड वी डोंट ओन एनीथिंग, वी डोंट पोसेस एनीथिंग, नॉट इवन पीपल। सो हूएवर वी कम अक्रॉस, हूएवर इज देयर इन आवर लाइफ, वॉट एवर इज बीन गिवन टू अस, वी अप्रिशिएट इट बट एज अ ट्रस्टी, हम कुछ समय के लिए उसकी मालिक है। तो जब ये दिमाग में ये ध्यान आपको आ जाता है, इट इज ऑल्सो ईजी टू लेट गो, इट इज ऑल्सो ईजी टू बी डिटैच्ड। एक और बात जो मैंने राजयोग ज्ञान से और स्पिरिचुअलिटी सीखा है, वो है द कॉन्सेप्ट ऑफ यूनिवर्सल ब्रदरहुड, यानी कि हम सब आत्माएं और हम सब कनेक्टेड हैं, हम एक जैसे हैं, हमारा ओरिजिनल क्वालिटी सारे सेम है, हम सब एक ही परमपिता सुप्रीम के बच्चे हैं। सो हम दूसरों के साथ खराब व्यवहार कैसे रख सकते हैं, हम उनकी बातों को बहुत समय के लिए बुरा क्यों माने, कैसे माने, क्योंकि हमको पता है वो जो है वो अपनी रोल प्ले कर रहे हैं, अपनी इस ड्रामा में उनका पार्ट बंधा हुआ है और अपनी रोल प्ले कर रहे हैं. सो व्हेन यू हैव दिस अंडरस्टैंडिंग विच इज नॉट ईजी इन द बिगिनिंग, बट धीरे धीरे जब अपने इसमें डीपली जाएंगे, समझते हैं दैट हम लोगों की बातों से, उनकी मूड से, उनकी बिहेवियर से इतने ज्यादा प्रभावित होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वो कर रहे हैं जो वो जानते हैं, जो उनका पार्ट बना हुआ है, वो वही पार्ट को प्ले कर रहे हैं. तो हम अपने अंदर इतनी नेगेटिविटी उनकी वजह से क्यों लेकर अपना मेंटल और इमोशनल फ्रेम ऑफ माइंड को खराब करें. ये बहुत प्रैक्टिकल भी है और गहरा भी है. सो इसको अगर आप प्रैक्टिस करेंगे और समझेंगे और प्रैक्टिस करेंगे तो आपके लिए बहुत बेनिफिशियल होगा. दैट ब्रिंग्स मी टू द लास्ट एस्पेक्ट ऑफ स्पिरिचुअलिटी विच इज द डेली रूटीन, द डेली प्रैक्टिसेस, द डिसिप्लिन ऑफ गेटिंग अप अर्ली, मेडिटेटिंग, हैविंग टाइम फॉर स्पिरिचुअल नॉलेज, और आपकी जो आपकी डाइट है, फूड हैबिट्स है, वो सात्विक जो होना चाहिए, और सारे दिनचर्या जो है हम कनेक्टेड रहें अपने अंदर अपनी रियल सेल्फ से, इनर सेल्फ से, और हमारे हायर सेल्फ और हमारी हायर कॉन्शियसनेस, सुप्रीम सोल और जो परम पिता परमात्मा बोलते हैं, उनसे कनेक्टेड रहने से हम कितना शांत रह सकते हैं, कितना स्टेबल रह सकते हैं. और ये चीजें मैंने सीखा है और ये समय के साथ साथ हम सब, आप सब इसको अपना सकते हैं और डेवलप करेंगे तो यू विल फाइंड दैट लाइफ कैन बी ब्यूटिफुल, स्टेबल, एवरीथिंग इन बैलेंस एंड एवरीथिंग इन हार्मनी. अब आइए कुछ समय के लिए हम मेडिटेट करें, रिफ्लेक्ट करें, इतर में जाएं, इन बातों पर हम थोड़ा विचार चलाएं. आराम से बैठिए, अपने दोनों पांव नीचे और अपने हाथ कंफर्टेबल. अगर आपको आंख बंद करना है कर सकते हैं, खुला रखना है तो खुला रख दीजिए, जैसे आप चाहते हैं. पहला आपने ध्यान अपनी सांसों पर लाई. ब्रीद इन एंड आउट. Take a deep breath and then breathe out. Breathe in and breathe out and relax. ऐसे ही अपनी सांस को even regular बनाती जाइए, breathing in and out and relaxing. आपकी पूरी शरीर रिलैक्स्ड, हर मसल आपकी बॉडी में रिलैक्स्ड है, आपका मन भी धीरे धीरे रिलैक्स होते जा रहे हैं. नाउ फोकस ऑन योर माइंड, ऑब्जर्व योर माइंड. देखिए आपके मन में क्या विचार, क्या भावना चल रही है. नोटिस योर थॉट्स एंड योर फीलिंग्स. व्हाट आर यू थिंकिंग, व्हाट आर यू फीलिंग? ये क्या नेगेटिव विचार है, नेगेटिव भावना है या अच्छे विचार है? पॉजिटिव विचार और भावना है। देखिए, ऑब्जर्व करिए, साक्षीपन स्थिति में होकर, डिटैच्ड ऑब्जर्वर बनकर ऑब्जर्व करिए। कोई बात नहीं, जैसे भी विचार हो आप उसको रोकिए मत, उसको नहीं दबाइए, आपको सिर्फ उसको देखना है। नॉन जजमेंटल तरीके से अपने विचार, इमोशंस, फीलिंग्स सबको ऑब्जर्व करिए, और जैसे जैसे आप ऑब्जर्व करते जा रहे हैं आप देखेंगे आपके विचारों की गति कम होते जा रहे हैं। यू एक्सपीरियंस लेस एंड लेस थॉट्स। And you feel more comfortable, more peaceful. एक बहुत अच्छी महसूसता होती है। And your mind is calm. And peaceful. Now bring your attention to the center of your forehead between the eyebrows. That is the seat of your soul, the energy that runs your body. आत्मा का स्थान है आपकी प्रकृति के बीच में। Now, as you focus on this point of energy, soul, अपने आप को इसी प्रकार की thoughts दीजिए अपने मन में। I am a beautiful, powerful point of light. Point of positive, peaceful energy, जो मेरे पूरे शरीर में फैलता जा रहा है। I am a being of peace. I feel peace within me, and feel the vibrations of peace spreading all over my body. और ये शांति की किरणें बाहर भी फैल रहा है। I am surrounded by peaceful vibrations, peace radiating from me to my environment, to my surroundings. Makes my surroundings peaceful. और इस पीस को बढ़ाने के लिए और ये आंतरिक शक्ति को बढ़ाने के लिए, पावरफुल बनाने के लिए, मैं अपने परम पिता परमात्मा द पावर हाउस ऑफ एनर्जी, नॉलेज, पीस, लव, प्योरिटी, कंपैशन, अपने आप को उनसे छोड़े एंड फील, आई फील द एनर्जीज कमिंग फ्रॉम द सोर्स इनटू माय बॉडी, इनटू मी, वाइब्रेटिंग, making me strong, making me loving, compassionate, generous, positive, caring. ये सारे पॉजिटिव इमोशंस में अपने आप में महसूस कर रही हूं, क्योंकि मैं सोर्स से कनेक्टेड हूं, परमात्मा से ये सारे अपने अंदर लेकर अपने बाहर अपने वायुमंडल में भी फैला रही हूं। और जो भी सिचुएशंस मेरे सामने आते हैं और आएंगे, मुझे पता है मैं इसी स्थिति पर उसको सामना कर सकती हूँ। आई फेस द चैलेंजेस एंड ऑब्स्टिकल्स विद द सेम सेंस ऑफ पीस, लव, स्ट्रेंथ, जॉय, हैप्पीनेस। And I know I will be able to overcome them. मैं परिस्थितियों से नहीं डरती हूँ, मैं सामना कर सकती हूँ और अपनी मनोस्थिति को बैलेंस में रखकर हर जगह मैं अपने कार्य बहुत अच्छी तरीके से कर सकते। I'm contented. I'm happy. I'm peaceful and joyful. And I have a beautiful emotional health and well-being. इन्हीं फीलिंग्स को लेकर जब वापस मैं अपनी अवेयरनेस में आऊंगी, मैं इन्हीं फीलिंग्स के साथ अपने सारा दिनचर्या, अपने काम के क्षेत्र में, परिवार के साथ इन्हीं फीलिंग्स के साथ उनके साथ इंटरैक्ट करूं और अपने जीवन में बहुत पीसफुल और हारमोनियस बनाऊंगी। ओम शांति।
ओम शांति। प्रजापिता ब्रह्मा कुमारीज एवं मेडिकल विंग, राजयोग एजुकेशन रिसर्च फाउंडेशन, RERF, आपके लिए लेकर आए हैं राजयोग मेडिटेशन कोर्स। आइए इस अंतर मन की यात्रा में हमारे साथ जुड़ें। राजयोग मेडिटेशन कोर्स का आगामी सत्र सोमवार से गुरुवार, मंडे से थर्सडे शाम 7 बजे से 8 बजे तक मेडिकल विंग के फेसबुक पेज facebook.com/medicalwinghq/live व मेडिकल विंग के यूट्यूब चैनल youtube.com/bkmedicalwing/live। ध्यान रहे, इसका ऑनलाइन लाइव प्रसारण होगा। WhatsApp 861-993-7031।